एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये है सेनिया पाशेता की मॉडर्न आयरलैंड, ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो जानी मानी सीरीज है वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसी का हिस्सा है। काफी काम की सीरीज है ये।
बिल्कुल, मुश्किल विषयों को आसानी से समझने में मदद करती है। और आयरलैंड का इतिहास ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं लगती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें राष्ट्रवाद, पहचान के संघर्ष, सामाजिक बदलाव और हाँ, शायद सबसे जरूरी, जो गहरे झगड़े होते हैं उन्हें सुलझाने की कोशिशें, ये सब देखने को मिलता है।
और ये मुद्दे आज भी कितने प्रासंगिक हैं दुनिया भर में, हमारे अपने समाज में भी।
खासकर ये पहचान वाले मुद्दे और संघर्ष समाधान भी।
हाँ, और इतिहास कैसे आज भी असर डालता है। जैसे आपने ब्रेक्जिट का जिक्र किया, आयरिश सीमा का सवाल फिर खड़ा हो गया।
सही है। तो चलिए आज इसी उतार चढ़ाव भरे सफर को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस छोटे से द्वीप ने अपनी जगह कैसे बनाई।
शुरुआत लेखिका से करते हैं, सेनिया पाशेटा।
हाँ, सेनिया पाशेटा ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में मॉडर्न हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं और इनका स्पेशलाइजेशन है आधुनिक आयरिश और ब्रिटिश इतिहास। मतलब वो इस विषय की एक्सपर्ट हैं।
और जैसा आपने कहा, वो सिर्फ बड़ी बड़ी घटनाओं या लड़ाइयों का इतिहास नहीं लिखती, वो गहराई में जाती हैं, जैसे आयरिश राष्ट्रवाद कैसे पनपा।
हाँ, और इतिहास में महिलाओं की क्या भूमिका थी, राजनीति और संस्कृति का रिश्ता क्या था, शिक्षा ने क्या बदला, और जाहिर है आयरिश क्रांति की कहानी तो है ही।
उनके नज़रिए में जो खास बात मुझे लगी वो है उनका अलग अलग चीज़ों को जोड़ कर देखना। मतलब वो राजनीतिक घटनाओं को समाज और संस्कृति से जोड़ती हैं।
बिल्कुल, वो सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि उसका आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी सोच पर क्या असर पड़ा, ये भी समझाती हैं।
और एक कमाल की बात ये है कि वो बहुत मुश्किल जटिल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को भी काफी साफ और सरल भाषा में रख देती हैं।
सही कहा। और वो कहानी के अलग अलग किरदारों की आवाजों को भी जगह देती हैं, राष्ट्रवादी हों, संघवादी हों,
महिलाएं हों, आम किसान, सबकी बात।
हाँ, और शायद क्योंकि वो खुद आयरिश नहीं हैं, तो उन्हें एक तरह की विश्लेषणात्मक दूरी मिलती है, एक बैलेंस नजरिया रखने में मदद मिलती होगी।
हो सकता है। तो अब आते हैं किताब पर, ये है किस बारे में?
बेसिकली ये करीब 200 साल का इतिहास है, मोटा मोटा 1800 से लेकर आज तक का आयरलैंड।
लेकिन सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है ये।
नहीं, बिल्कुल नहीं। पशेता की कोशिश है कि आयरलैंड के आधुनिक बनने की कहानी को, वो जो एक रोमांटिक राष्ट्रवाद होता है ना, या पर सिर्फ अंग्रेजों के जुल्म वाला नजरिया, उससे हटकर एक संतुलित तरीके से देखा जाए।
तो किताब का मुख्य तर्क क्या है, क्या कहती हैं वो?
देखिए, सबसे बड़ा तर्क शायद यही है कि आधुनिक आयरलैंड का इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है। ऐसा नहीं कि पहले गुलामी थी और फिर अचानक से शानदार आजादी मिल गई।
हाँ,
कहानी ज्यादा उलझी हुई है।
हाँ,
ये राजनीति, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब के बीच जो लगातार एक टकराव और समझौते चलते रहे, उसका नतीजा है।
पाशेदार तर्क देती हैं कि आधुनिक आयरलैंड असल में कई चीजों के बीच एक निरंतर खींचतान से बना है, जैसे अपनी पुरानी परंपराएं और नई आधुनिकता,
राष्ट्रवाद और संघवाद, यानी ब्रिटेन से जुड़े रहने की इच्छा,
धर्म की पकड़ और फिर सेक्युलर विचारों का आना।
हाँ, और अपनी लोकल पहचान और फिर दुनिया से जुड़ने की जरूरत, इन सब के बीच एक जद्दोजहद चलती रही।
तो असल में ये किताब इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि यूरोप के कोने में बसे इस छोटे से द्वीप ने दुनिया के बदलते दौर का सामना कैसे किया, अपनी पहचान कैसे बचाए रखी।
बिल्कुल, और वो पहचान भी, जैसा आपने कहा, कोई एक चीज नहीं थी, वो लगातार बनती बिगड़ती रही। राष्ट्रवाद कैसा हो, धर्म का क्या रोल, जमीन किसकी, हमारी संस्कृति क्या है, ब्रिटेन से रिश्ता कैसा हो, इन सब पर तीखे संघर्ष हुए।
किताब हमें इतिहास के बड़े पड़ावों से गुजरती है, 1798 का विद्रोह,
फिर एक्ट ऑफ यूनियन जब उनकी अपनी संसद खत्म हुई,
कैथोलिकों को अधिकार दिलाने वाला आंदोलन,
वो भयानक अकाल, महान अकाल जिसे कहते हैं,
होम रूल यानी अपने शासन के लिए लंबा संघर्ष, 1916 का ईस्टर विद्रोह,
आजादी की लड़ाई, और फिर आजादी के ठीक बाद आपस में ही गृह युद्ध,
और फिर आगे चल के ईयू में शामिल होना और उत्तरी आयरलैंड में गुड फ्राइडे समझौता, सब कुछ कवर किया है।
हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स की लिस्ट नहीं है। पाशेता दिखाती हैं कि इन सब का असर आम जिंदगी पर कैसे पड़ा।
जैसे
शहरों और गांवों में औद्योगिकरण के अलग अलग अनुभव, बेलफास्ट में अलग, डबलिन में अलग, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट रिश्ते कैसे बदले, गैलिक भाषा और संस्कृति को बचाने की कोशिशें हुई,
महिलाओं की स्थिति कैसे बदली, वर्ग संघर्ष और हाँ, लाखों लोगों का देश छोड़कर जाना, प्रवास।
बिल्कुल, ये सब मिलकर ही आधुनिक आयरलैंड की पूरी तस्वीर बनाते हैं।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहला दौर करीब 1800 से 1850, संघ और मुक्ति।
हाँ, इसकी शुरुआत होती है 1798 के विद्रोह से। इसमें कैथोलिक प्रोटेस्टेंट सब मिलकर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, यूनाइटेड आयरिशमैन।
ये नाकाम रहा, पर इसका असर बहुत गहरा पड़ा आगे चलकर।
सही, और इसी के तुरंत बाद 1801 में आया एक्ट ऑफ यूनियन, आयरलैंड की अपनी संसद भंग, सीधे लंदन से शासन।
सोचा गया था कि इससे आयरिश प्रॉब्लम हल हो जाएगी,
पर हुआ उल्टा, पहचान का सवाल और तीखा हो गया।
यहीं पर वो बड़ा नाम आता है, डैनियल ओकोनल, द लिबरेटर।
हाँ, उन्होंने कैथोलिकों को बराबरी के अधिकार, खासकर संसद में बैठने का हक दिलाने के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया, मास मोबिलाइजेशन।
ये पहली बार था कि आयरलैंड में आम जनता, खासकर कैथोलिक जनता, इतने बड़े पैमाने पर राजनीति में शामिल हुई।
बिल्कुल, इसने कैथोलिक धर्म और आयरिश राष्ट्रवाद को एक तरह से जोड़ दिया और संवैधानिक मतलब शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध का एक खाका तैयार किया।
इस शुरुआती राजनीतिक जागृति के बाद आयरलैंड पर एक भयानक कहर टूटा। दूसरा चैप्टर, महान अकाल 1845-1852।
हाँ, आलू की फसल जो गरीबों का मुख्य खाना थी वो पूरी तरह खराब हो गई, एक बीमारी लगी उसमें।
नतीजा 10 लाख से ज्यादा मौतें भुखमरी से,
और उतने ही करीब 10 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हमेशा के लिए।
ये सिर्फ फसल खराब होने की बात नहीं थी, है ना?
नहीं, उसके पीछे जमीन का मालिकाना हक का स्ट्रक्चर, ब्रिटिश सरकार की नीतियां, या कहें कि उनकी कथित विफलता, ये सब कारण थे। बहुत जटिल मामला था।
इसका असर क्या हुआ, भुखमरी और मौत के अलावा?
इसने आयरलैंड को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरह से इसने आधुनिकीकरण को तेज किया, लेकिन बहुत भारी कीमत पर। लोगों में जबरदस्त गुस्सा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ।
राष्ट्रवाद और मजबूत हुआ होगा।
बिल्कुल, सामाजिक ताना बाना टूट गया, गांव के गांव खाली हो गए, और आयरिश भाषा, उसका पतन तेज हो गया।
अकाल के बाद क्या बदला?
सबसे बड़ा मुद्दा बन गया जमीन का सवाल, लैंड क्वेश्चन। जमीन किसकी होनी चाहिए?
किसानों ने जमींदारों के खिलाफ संघर्ष तेज कर दिया, लैंड वॉर्स।
हाँ, लैंड लीग बनी, बड़े खेतों का कंसोलिडेशन हुआ, और किराएदार किसानों का एक नया वर्ग उभरा, और अकाल की जो भयानक यादें थीं, वो एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गईं।
अब आते हैं तीसरे दौर पर, करीब 1870 से 1914, होम रूल और भूमि युद्ध, और साथ में सांस्कृतिक क्रांति भी।
यहाँ एक और बड़ा लीडर सामने आता है, चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नेल। बहुत करिश्माई नेता थे।
उन्होंने क्या किया?
उन्होंने जमीन के लिए चल रहे संघर्ष को, संवैधानिक राष्ट्रवाद, होम रूल की मांग को, और जो ज्यादा रेडिकल फिनियन मूवमेंट था उसको बड़ी कुशलता से जोड़ा।
उनकी पार्टी आयरिश पार्लियामेंट्री पार्टी ब्रिटिश संसद में काफी ताकतवर हो गई थी।
हाँ, वेस्टमिंस्टर में वो बैलेंस ऑफ पावर होल्ड करते थे, कई बार होम रूल बिल पास होने के बहुत करीब पहुंच गए थे।
लेकिन फिर विरोध हुआ,
जबरदस्त विरोध, खासकर उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट संघवादियों का। वो ब्रिटेन से अलग नहीं होना चाहते थे। इससे 1912-14 में होम रूल संकट खड़ा हो गया, गृह युद्ध की नौबत आ गई थी,
और इसी दौरान जमीन के लिए संघर्ष भी चल रहा था।
हाँ, वो भी जोरों पर था, कृषि विरोध, बहिष्कार, ये बॉयकॉट शब्द यहीं से आया है, कैप्टन बॉयकॉट के नाम से, किराया हड़तालें।
इसका नतीजा क्या निकला?
कुछ भूमि सुधार हुए, कानून बने जिनसे धीरे धीरे किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिलने लगा, एक प्रॉपर्टी ओनिंग किसान वर्ग तैयार हुआ।
और इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक और चीज चल रही थी, सांस्कृतिक क्रांति, गेलिक रिवाइवल।
हाँ, ये बहुत जरूरी है, 19वीं सदी के आखिर में ये शुरू हुआ। कोशिश थी अपनी जड़ों की तरफ लौटने की, अंग्रेजी असर से अलग एक खास आयरिश पहचान बनाने की।
इसमें क्या क्या शामिल था?
गेलिक एथलेटिक एसोसिएशन, GAA बनी, जिसने हर्लिंग और गेलिक फुटबॉल जैसे आयरिश खेलों को लोकप्रिय बनाया। गेलिक लीग ने आयरिश भाषा को बचाने और सिखाने का काम किया।
और साहित्य में भी, येट्स, लेडी ग्रेगरी।
बिल्कुल, साहित्यिक पुनरुत्थान हुआ, इसने लोगों में एक राष्ट्रीय गौरव जगाया। और ये सिर्फ संस्कृति की बात नहीं थी, इसने आगे चलकर जो राजनीतिक क्रांति हुई उसके लिए जमीन तैयार की, उसको ईंधन दिया।
और फिर आता है सबसे विस्फोटक दौर, चौथा अध्याय, क्रांति और गृह युद्ध 1914 से 1923।
हाँ, पहले विश्व युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए। आयरिश राष्ट्रवादियों के लिए ये एक मुश्किल समय था, पर एक अवसर भी।
कैसे?
कुछ आयरिश ब्रिटेन की तरफ से लड़ने गए, लेकिन कई राष्ट्रवादियों ने सोचा इंग्लैंड की मुश्किल हमारा मौका है।
इसी माहौल में हुआ 1916 का ईस्टर विद्रोह डबलिन में।
हाँ, हाँ। कुछ हथियारबंद राष्ट्रवादियों ने आजादी का ऐलान कर दिया। सैनिक तौर पर यह पूरी तरह फेल हो गया, कुछ ही दिनों में कुचल दिया गया।
लेकिन इसका असर उल्टा हुआ।
बिल्कुल, जब ब्रिटिश सरकार ने इसके नेताओं को फांसी दी तो वो शहीद बन गए। पैट्रिक पियर्स और उनकी बलिदान की विचारधारा, आम लोगों का पूरा मूड अब रिपब्लिकनवाद यानी पूरी आजादी के हक में हो गया।
यहीं से सिन फेन पार्टी का उभार हुआ।
हाँ, सिन फेन जो पूरी आजादी चाहती थी बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई। 1918 के चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की, ज्यादातर आयरिश सीटें जीती और ब्रिटिश संसद जाने के बजाय अपनी अलग संसद डॉयल इरन बना ली।
और फिर शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम 1919 से 1921।
हाँ, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA ने ब्रिटिश सेना और पुलिस के खिलाफ गुरेला युद्ध छेड़ दिया।
ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी?
नहीं, ज्यादातर छापामार हमले, घात लगाकर वार करना। ब्रिटिश सेना के लिए इससे निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसमें काफी हिंसा हुई दोनों तरफ से।
आखिरकार 1921 में समझौता हुआ, एंग्लो आयरिश संधि।
हाँ, इसने आयरलैंड को डोमिनियन स्टेटस दिया, मतलब अंदरूनी मामलों में काफी हद तक आजादी, अपनी सरकार, अपनी सेना।
लेकिन दो बड़ी शर्तें थीं जो बहुत विवादास्पद साबित हुईं।
सही, एक तो ब्रिटिश राजा के प्रति वफादारी की शपथ लेनी थी और दूसरा सबसे अहम, द्वीप का बंटवारा हो गया।
26 काउंटीज मिलकर बना आयरिश फ्री स्टेट और उत्तरी 6 काउंटी ब्रिटेन का हिस्सा बने रहे।
और इसी संधि पर आयरिश राष्ट्रवादी आपस में ही बट गए बुरी तरह।
क्यों? कुछ लोगों को ये मंजूर क्यों नहीं था?
क्योंकि उन्हें लगा ये असली आजादी नहीं है, शपथ और बंटवारा ये उन्हें मंजूर नहीं था, उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र गणराज्य चाहिए था।
इसी से गृह युद्ध शुरू हुआ 1922-1923।
हाँ, संधि मानने वालों जो अब फ्री स्टेट सरकार थे, माइकल कुलिंस जैसे नेता इसमें थे, और संधि का विरोध करने वालों IRA के वे गुट जो संधि के खिलाफ थे, के बीच भयानक लड़ाई हुई।
इसमें माइकल कुलिंस भी मारे गए।
हाँ, ये बहुत कड़वा दौर था, भाई भाई के खिलाफ लड़ा। इसकी कड़वी विरासत आयरलैंड की राजनीति पर दशकों तक छाई रही।
गृह युद्ध के बाद 5वां दौर शुरू होता है, नए राज्य का निर्माण 1923 से 1960 तक।
अब आयरिश फ्री स्टेट वो 26 काउंटी के सामने चुनौती थी अपने पैरों पर खड़े होने की, देश बनाने की।
शुरुआत में कौन सी सरकार थी?
शुरुआत में क्यूमन्ना गेल सरकार थी, जो संधि के समर्थक थे। उन्होंने स्थिरता लाने पर जोर दिया, थोड़ा रूढ़िवादी नजरिया था।
लेकिन फिर एमआर डेविलेरा और उनकी फियाना फेल पार्टी का उदय हुआ।
हाँ, 1932 में वो सत्ता में आए और फिर दशकों तक आयरलैंड की सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति बने रहे। डेविलेरा गृह युद्ध में संधि के विरोधी पक्ष के नेता थे।
उनका विजन क्या था आयरलैंड के लिए?
उनका सपना एक रूढ़िवादी, काफी हद तक कृषि प्रधान और बहुत ज्यादा कैथोलिक मूल्यों वाले आयरलैंड का था। वो ब्रिटेन से दूरी बनाना चाहते थे।
1937 में नया संविधान भी आया।
हाँ, जिसमें कैथोलिक चर्च को एक विशेष स्थान दिया गया। हालांकि वो स्टेट रिलीजन नहीं बना, पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा था।
समाज पर चर्च का कितना असर था इस दौर में?
बहुत गहरा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सेंसरशिप किताबों फिल्मों पर, तलाक और गर्भ निरोधक पर पूरी तरह पाबंदी, इन सब पर चर्च का भारी प्रभाव था।
अर्थव्यवस्था कैसी थी?
काफी बंद थी। संरक्षणवाद, यानी बाहरी सामान पर भारी टैक्स ताकि देश में बनी चीजें बिकें। आयात प्रतिस्थापन की नीति थी। सांस्कृतिक रूप से भी काफी अलग थलग रहने की कोशिश थी।
और दूसरे विश्व युद्ध में आयरलैंड तटस्थ रहा।
हाँ, ये डेविलेरा की एक अहम नीति थी।
अब आते हैं आखिरी और छठे दौर पर, 1960 से आज तक, आधुनिकीकरण, उत्तरी आयरलैंड और शांति।
वाह।
पहले उत्तरी आयरलैंड की बात कर ले।
हाँ, उत्तरी आयरलैंड वो 6 काउंटी 1921 में बनाई इसलिए था कि वहां प्रोटेस्टेंट संघवादियों का बहुमत रहे, और हुआ भी यही। दशकों तक वहां एक ही पार्टी अल्स्टर यूनियनिस्ट पार्टी का राज रहा।
और कैथोलिक राष्ट्रवादी अल्पसंख्यकों की स्थिति?
उनके साथ व्यवस्थागत भेदभाव होता था, नौकरियों में, घर मिलने में, वोटिंग के सिस्टम में, गेरीमैंडरिंग। पुलिस बल, जिसे रॉयल अल्स्टर कांस्टेबलरी कहते थे, और उसके सहायक बल बी स्पेशल्स, उन पे कैथोलिकों को बिल्कुल भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था ये पक्षपाती हैं।
वहां के पहले प्रधानमंत्री जेम्स क्रेग ने तो कहा भी था कि ये प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए प्रोटेस्टेंट संसद है।
बिल्कुल, ये एक तरह से सांप्रदायिक राज्य था।
इसी भेदभाव के खिलाफ 1960 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ।
हाँ, अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट से प्रेरित होकर वो बराबरी की मांग कर रहे थे,
लेकिन इस पर प्रतिक्रिया हिंसक हुई।
हाँ, लॉयलिस्ट गुटों और पुलिस ने सख्ती दिखाई और फिर शुरू हुआ लगभग 30 साल लंबा हिंसक संघर्ष, जिसे द ट्रबल्स कहते हैं। 1960 के दशक के अंत से लेकर 1998 तक चलाइए।
इसमें कौन कौन शामिल थे?
ये बहुत जटिल जाति राष्ट्रवादी संघर्ष था। एक तरफ रिपब्लिकन थे, खासकर प्रोविजनल IRA, जो आयरलैंड का एकीकरण चाहते थे। दूसरी तरफ लॉयलिस्ट पैरामिलिट्री गुट थे, जैसे UVF, UDA, जो ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना चाहते थे। और बीच में थी ब्रिटिश सेना, जिसे हालात काबू करने के लिए भेजा गया था।
बहुत हिंसा हुई इसमें। ब्लडी संडे 1972, भूख हड़ताल 1981, ये कुछ बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं।
हाँ, हजारों लोग मारे गए, समाज बुरी तरह बट गया।
लेकिन इसी दौरान दक्षिण में, यानी आयरलैंड गणराज्य में, बड़े बदलाव आ रहे थे।
बिल्कुल, 1960 के दशक से ही शॉन लेमास जैसे नेताओं ने अर्थव्यवस्था को खोलने की कोशिश शुरू की। संरक्षणवाद छोड़ा, विदेशी निवेश को आकर्षित किया, इसे व्यवहारिक राष्ट्रवाद कहा गया।
और 1973 में यूरोपियन यूनियन, तब EEC, में शामिल होना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
बहुत बड़ा। इससे आयरलैंड की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिला, आधुनिकीकरण तेज हुआ, नए मौके मिले। इसी के चलते 90 और 2000 के दशक में वो सेल्टिक टाइगर बना, जब इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। हालांकि बाद में उसमें गिरावट भी आई।
और अर्थव्यवस्था के साथ साथ समाज भी बदला।
हाँ, बहुत तेजी से। कैथोलिक चर्च का दबदबा कम हुआ, खासकर जब कई स्कैंडल सामने आए। लोगों की सोच ज्यादा उदार हुई।
जैसे?
जैसे तलाक को 1995 में कानूनी मंजूरी मिली जनमत संग्रह के बाद, फिर 2015 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली, वो भी जनमत संग्रह से, और 2018 में गर्भपात पर लगे कड़े प्रतिबंधों को हटाया गया, फिर से जनमत संग्रह के जरिए।
ये तो वाकई बड़े बदलाव हैं।
बिल्कुल, आयरलैंड एक ज्यादा धर्मनिरपेक्ष, ज्यादा बहुसांस्कृतिक देश बन गया। इसे कई लोग दूसरी क्रांति कहते हैं, एक शांत सामाजिक क्रांति जिसने पुराने आयरलैंड को बदल दिया।
और उत्तरी आयरलैंड में इतने सालों की हिंसा के बाद शांति कैसे आई?
ये एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया थी। कई सालों की बातचीत, कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार 1998 में गुड फ्राइडे समझौता या बेलफास्ट समझौता हुआ।
इसमें क्या खास था?
इसमें सबसे अहम था सत्ता साझाकरण का सिद्धांत, यानी सरकार में संघवादी और राष्ट्रवादी दोनों की भागीदारी होगी। इसने ये भी माना कि लोगों की पहचान दोहरी हो सकती है, वो खुद को आयरिश, ब्रिटिश या दोनों मान सकते हैं।
जॉन ह्यूम जैसे नेताओं की इसमें बड़ी भूमिका थी।
हाँ, उन्हें इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। इस समझौते से हिंसा काफी हद तक खत्म हो गई। हालांकि आज भी ब्रेग्जिट जैसे मुद्दों की वजह से वहां राजनीतिक अस्थिरता और तनाव है, पर यह समझौता एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है।
तो इस पूरी कहानी से, जो इतनी जटिल और लंबी है, क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे लिए पहली और सबसे जरूरी बात है पहचान की जटिलता। आयरिश पहचान कभी भी कोई एक ठोस चीज नहीं रही, ये हमेशा बदलती रही है, इस पर लगातार संघर्ष होता रहा है। राष्ट्रवाद, धर्म, जमीन, संस्कृति, ब्रिटेन से रिश्ता।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि पहचान कितनी बहुस्तरीय होती है, कोई एक लेबल काफी नहीं होता।
दूसरी बात जो मुझे अहम लगी वो है आधुनिकता का अपना रास्ता चुनना।
हाँ, ये दिलचस्प है। आयरलैंड ने ना तो पश्चिम की पूरी नकल की, ना ही अपनी परंपराओं में पूरी तरह जकड़ा रहा। उसने एक तरह का मिलाजुला रास्ता अपनाया,
बाहरी असर और अपनी जड़ें दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश।
सही। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक लामबंदी की ताकत।
हाँ, ओकुनेल के जमाने से लेके लैंड वॉर्स, आजादी की लड़ाई और फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में सिविल राइट्स मूवमेंट तक,
ये कहानी बार बार दिखाती है कि जब आम लोग संगठित होकर आवाज उठाते हैं तो वो बदलाव ला सकते हैं, वो इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं।
चौथा मुद्दा जो शायद सबसे ज्यादा नजर आता है वो है धर्म और राजनीति का गहरा रिश्ता।
हाँ, आयरलैंड में कैथोलिक बनाम प्रोटेस्टेंट पहचान सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं था, ये सीधे तौर पर राजनीति से, समाज से, जमीन के बंटवारे तक से जुड़ा था।
और बाद में धर्म का असर कम होना और सेक्युलर विचारों का बढ़ना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ये रिश्ता स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है।
बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट, बंटवारे की स्थायी विरासत।
1921 का बंटवारा वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, है ना?
नहीं, वो एक प्रक्रिया थी जिसने द्वीप के दोनों हिस्सों को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया, और उसका असर आज भी है। ब्रेक्जिट ने इसे फिर से सतह पर ला दिया है।
ये दिखाता है कि इतिहास के घाव कितने गहरे हो सकते हैं और कितनी देर तक बने रह सकते हैं।
किताब में कुछ विचार वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे पाशिता लिखती हैं, आधुनिक आयरलैंड सिर्फ बाहरी ताकतों का नतीजा नहीं था, बल्कि ये बदलते हालात में आयरिश लोगों के खुद के प्रयासों, उनकी रचनात्मकता और अपनी संस्कृति को बचाए रखने की उनकी जिद से उभरा।
ये बात आयरिश लोगों को सिर्फ शिकार की तरह नहीं देखती, बल्कि कर्ता मानती है, एजेंसी देती है।
बिल्कुल। और अकाल पर यह विचार भी सोचने लायक है। महान अकाल सिर्फ एक कुदरती आफत या अंग्रेजी नीति का नतीजा नहीं था, बल्कि ये पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और राजनीति के जटिल ताने बाने का प्रतीक था, जिसने अनजाने में ही सही आधुनिकीकरण को तेज कर दिया।
यानी एक भयानक त्रासदी भी कैसे अप्रत्याशित बदलावों का कारण बन सकती है।
हाँ, और आयरिश राष्ट्रवाद की कामयाबी पर भी एक दिलचस्प विश्लेषण है। आयरिश राष्ट्रवाद इसलिए सफल नहीं हुआ कि उसने नए जमाने को नकार दिया, बल्कि इसलिए कि उसने आधुनिक राजनीति के तरीकों को अपनाया, बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ना, चुनाव लड़ना और अपनी पहचान बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया।
ये भी एक अलग नज़रिया है, और हाल के सामाजिक बदलावों पर ये टिप्पणी तो आज के आयरलैंड को समझने के लिए बहुत ज़रूरी लगती है। हाल का सामाजिक उदारीकरण एक शांत लेकिन बहुत गहरी दूसरी क्रांति है, जिसने उस पुराने रूढ़िवादी कैथोलिक आयरलैंड को लगभग बदल दिया है, जिसका सपना आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पीढ़ी ने देखा था।
बिल्कुल। और अंत में शांति प्रक्रिया पर ये विचार उम्मीद जगाता है। शांति प्रक्रिया ने दिखाया कि सबसे मुश्किल और पुराने झगड़ों को भी लगातार राजनीतिक कोशिशों और नए संस्थागत तरीकों से सुलझाया जा सकता है, अगर सभी पक्ष हिंसा छोड़कर बातचीत और एक दूसरे को मान्यता देने के लिए तैयार हों।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। तो इस सारे इतिहास से हम आज की जिंदगी के लिए क्या सबक निकाल सकते हैं? पहला तो शायद पहचान की राजनीति को समझना है।
हाँ बिल्कुल। आयरलैंड का अनुभव दिखाता है कि राष्ट्रीय, धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान कैसे लोगों को जोड़ सकती हैं, पर कैसे बुरी तरह बांट भी सकती हैं, हिंसा तक ले जा सकती हैं।
ये सोचना जरूरी है कि हम अपनी पहचानों को कैसे देखते हैं और वो दूसरों के साथ हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालती हैं।
दूसरा सबक संघर्ष समाधान से जुड़ा है। नॉर्दर्न आयरलैंड की शांति प्रक्रिया, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हों, ये सिखाती है कि बातचीत, सबको साथ लेकर चलने वाली संस्थाएं बनाना और एक दूसरे के अधिकारों और पहचान का सम्मान करना कितना जरूरी है।
शायद ये तरीके दुनिया में और जगहों पर भी तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं।
तीसरा, धर्म और समाज का रिश्ता। आयरलैंड में चर्च के प्रभाव का शिखर पर पहुंचना और फिर नाटकीय रूप से कम होना, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज में धर्म की सार्वजनिक भूमिका क्या होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है।
ये बहस तो हमारे यहाँ भी लगातार चलती है।
बिल्कुल। और चौथा, सामाजिक बदलाव की गतिशीलता। आयरलैंड कैसे इतने कम समय में एक बहुत रूढ़िवादी समाज से एक काफी उदार समाज बन गया।
हाँ, ये दिखाता है कि शिक्षा, आर्थिक विकास, बाहरी दुनिया से जुड़ाव, मीडिया और खासकर महिलाओं की बदलती भूमिका, ये सब मिलकर समाज के मूल्यों को कितना बदल सकते हैं।
ये हमें अपने आसपास हो रहे बदलावों को समझने का एक फ्रेमवर्क दे सकता है।
इस पूरी बातचीत में मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात शायद यही थी कि आयरिश आधुनिकीकरण कितना टेढ़ा मेढ़ा, कितना मल्टी लेयर्ड था, कोई सीधी कहानी नहीं थी।
हाँ, लगातार मूलभाव, टकराव, समझौते
और कैसे संस्कृति, भाषा, खेल, साहित्य ने राजनीतिक क्रांति के लिए माहौल बनाया, ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प लगा।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। अतीत की छाया वर्तमान पर पड़ती है। अकाल, गृह युद्ध, बंटवारा, ये सब आज भी आयरलैंड की नस नस में महसूस होते हैं। लेकिन साथ ही ये देखना भी हिम्मत देता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति और रचनात्मकता से शांति का रास्ता ढूंढा जा सकता है। गुड फ्राइडे समझौता इसका सबूत है।
और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहां सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, आधुनिक आयरलैंड का अनुभव अपनी अलग राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने की चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में हमें क्या सिखाता है? क्या अपनी खास पहचान बनाए रखना जरूरी है, और अगर हाँ तो कैसे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।